Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Manopubangama dhamma. Mano setha manomaya. Manasache paduttena bhasativa karotiva tato nam dukham anaveti chakkam va vahato padam. Man sabhi dharmo arthat pravrittiyon ka agua hai. Man hi pradhan hai. Sabhi dharma manomay hai. Jab koi vyakti अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। धम्मपद गाथा एक। चक्खुपाल की कथा। बुद्ध के समय एक भिक्षु थे जो अरहत हो गए तथा उसी समय उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी। यहाँ तक कि एक अरहत भी कारण कार्य विधान से अछूता नहीं होता तथा जब तक उसका भौतिक शरीर अपनी मानसिक गतिविधियों के साथ विद्यमान रहता है अतीत में किए गए अनैतिक कर्मों का फल रोग आदि के रूप में प्रकट हो सकता है। किसी जागृत व्यक्ति तथा एक साधारण व्यक्ति के बीच अंतर यह है कि जागृत हो जाने के बाद व्यक्ति में पीड़ा या आनंद से कोई संघर्ष तथा प्रतिक्रिया नहीं होती, अतः कोई मानसिक कष्ट नहीं होता। कुछ भिक्षु उस विहार में आए जहां ये अरहत वास कर रहे थे तथा वे चारों ओर दृश्यावलोकन करने लगे थे क्योंकि बुद्ध एवं 80 महान शिष्य भी वहीं थे, किंतु भारी वर्षा ने उन्हें भिक्षु चक्खुपाल का दर्शन करने से रोक दिया। अतः उन्होंने प्रातः जाने का निर्णय लिया। रात में बारिश रुक गई तथा चक्खुपाल चंक्रमण के लिए बाहर आ गए। वर्षा के कारण चंक्रमण पथ कीड़ों से ढक गया था। चूंकि चक्खुपाल दृष्टिहीन थे उनके पैर उन कीटकों पर पड़े तथा अनेक की हत्या हो गई। भिक्षु जब उनके दर्शन के लिए प्रातः आए तो उन्होंने उन कीटकों को देखा तथा वे बुद्ध को सूचित करने पहुंचे। उन्होंने कहा जब वे दृष्टिवान थे तो वे इधर उधर पड़े रहते थे तथा सभी समय सोते रहते थे। अब जबकि वे दृष्टिहीन हैं तो उन्होंने चंक्रमण की ठान ली है। जब उन्होंने कहा कि चक्खुपाल ने अनेक कीटों को मार डाला था तो बुद्ध ने उनसे पूछा क्या तुमने उन्हें मारते हुए देखा था। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, जैसे तुम लोगों ने उन्हें मारते हुए नहीं देखा था उसी प्रकार उन्होंने उन जीवित प्राणियों को नहीं देखा था। जो लोग अकुशल प्रवृत्तियों से मुक्त हो चुके हैं उनमें मृत्यु का कारण बनने का कोई इरादा नहीं होता। तो हम देख सकते हैं कि किसी कर्म से जुड़ी मानसिक इच्छा ही कारण तथा उसके परिणाम के विधान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। भिक्षुओं ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो अरहत हो गया हो वह अंधा हो जाए। उत्तर था अपने अतीत के संस्कारों अर्थात इच्छाधारी कृत्यों के प्रभाव के माध्यम से। तथा बुद्ध ने भिक्षुओं को चक्खुपाल के पिछले जन्म की कहानी सुनाई जिसके कारण वे दृष्टिहीन हुए थे। अपने पिछले जन्म में चक्षुपाल एक चिकित्सक थे। उन्होंने एक महिला की चिकित्सा की थी जिसकी आंखों में कष्ट था। महिला ने वादा किया कि यदि वे उसे ठीक कर दें तो वह अपने बच्चों समेत उनकी दासी बन जाएगी। उपचार सफल हुआ किंतु महिला का दासी बनने का विचार बदल गया तथा उसने आंखें न ठीक होने का नाटक किया। चिकित्सक को पता चल गया कि वह झूठ बोल रही थी, अतः उन्होंने बदला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, मुझे इसके शुल्क की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसे दृष्टिहीन कर दूंगा, तथा उन्होंने उसे एक लेप दिया जिसे उससे लगाने के लिए कहा, जिससे उसकी दृष्टि चली गई। बुद्ध ने अपने स्पष्टीकरण का समापन उस गाथा से किया जिसे हमने धम्मपद से उद्धृत किया है। यह बताती है कि अतीत में किए गए कर्मों का फल अनिवार्य रूप से कभी न कभी मिलता ही है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठे न भासति वा करोति वा ततो न दुखम अनुवेति चक्कम वहतो पदम। मन सभी धर्मों अर्थात प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। इस कथा में हम कर्म के उस पहलू को देखते हैं जिसमें संस्कारों अर्थात इच्छा शक्ति पूर्ण कृत्यों का प्रतिकार होता है। एक पहलू निरंतरता का भी है, अर्थात व्यक्तिगत विशेषताओं प्रभावों प्रवृत्तियों इत्यादि का पुनर्जन्म चक्र अर्थात संसार में जीवन पर्यंत संचरण। एक अरहत सभी अशुद्धियों से मुक्त होता है किंतु जब तक उसके शरीर एवं मन निकाय विद्यमान है स्वयं द्वारा बोए गए बीजों का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। बुद्ध एवं अरहत नए कर्म अर्जित नहीं करते क्योंकि उन्होंने अज्ञानता एवं तृष्णा रूपी जड़ों को नष्ट कर दिया होता है, किंतु अन्य सभी प्राणियों की तरह वे भी अतीत में किए गए अच्छे या बुरे कार्यों के अपरिहार्य परिणाम से मुक्त नहीं होते। मन सभी कार्यों का अगुआ है, वह कार्य निष्पादन तथा कार्यों की प्रतिक्रिया दोनों पहलुओं में प्रमुख तत्व के रूप में भाग लेता है। यह मन ही है जो कार्यों को आकार देता है तथा उन्हें नियंत्रित करता है। वाणी एवं कार्य भी मन द्वारा उत्पादित होते हैं। मठ कुंडली की कथा। धम्मपद की इस पहली एवं दूसरी गाथा में जिसे हम अब देखेंगे मनुष्य जीवन में मन की अपार भूमिका को बुद्ध महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई कार्य अच्छा है या बुरा यह मनोदशा की शुद्धता अथवा अशुद्धता पर निर्भर करता है तथा वे इस तथ्य की बात करते हैं कि ऐसे कर्मों के परिणाम अनिवार्य होते हैं। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुखम अनुवेति छाया व अनपायिनी। मन सभी धर्मों अर्थात प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी संग न छोड़ने वाली साया साथ साथ चलने लगती है। धम्मपद गाथा दो। यह दूसरी गाथा पहले की पूरक है। पहली ने सिखाया है कि बुराई का परिणाम बुरा होता है। यह हमें सिखाती है कि अच्छे का परिणाम अच्छा होता है। यह गाथा मठ कुंडली के संदर्भ में कही गई थी। वह एक ऐसे धनी व्यक्ति के पुत्र थे जो अतिशय कृपण था। बालक पीलिया से पीड़ित था तथा मृत्यु के निकट आ गया था, क्योंकि उसके पिता पैसा खर्च करने से इतना डरते थे कि वे अपने बेटे की चिकित्सा करवाने के लिए कोई वैद्य भी नहीं बुलाते थे। अंत में जब उन्होंने वैद्य को बुलाया तो बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध ने मठ कुंडली की दुखद स्थिति जानी तथा वे उसके घर गए, जिससे कि वह बालक उन्हें मृत्यु से पहले देख ले। बुद्ध जानते थे कि तब पवित्र हृदय के साथ उसका देहांत होगा। परिणाम स्वरूप वह बालक एक देवलोक में पुनर्जन्म लेगा तथा वहां धम्म शिक्षा प्राप्त कर जागृति के पहले चरण तक पहुंचने में सक्षम होगा, एवं उसके पिता भी अपने बेटे का भाग्य देखकर वही पद प्राप्त करेंगे। पटाचारा की कथा। योच वस्सतम जीवे अपस्सम उदयभयम् एकाहम जीवितम सेयो वस्सतो उदयभयम्। पंचस्कंध के उदय व्यय को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उदय व्यय को देखने वाले व्यक्ति का 1 दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। धम्मपद गाथा 113। यह गाथा पटाचारा के संदर्भ में दी गई थी। वह श्रावस्ती, पाली में सावत्थी, के एक 40 करोड़ के धनी व्यापारी की पुत्री थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसे 7 मंजिले ऊंचे महल में रखकर उस पर पहरा लगवा दिया, किंतु उसने अपने सेवक के साथ दुराचार किया। यह जानते हुए कि उसके माता पिता का अनुमोदन कभी नहीं प्राप्त होगा, वह एवं सेवक भाग गए। वे दूर के एक गांव में रहते लगे। पति कृषि करता तथा वन में से ईंधन के लिए लकड़ियां एवं पत्तियां एकत्रित करता। पटाचारा भोजन एवं धुलाई सफाई का काम करती। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। उसने अपने पति से विनती की कि वह उसे उसके माता पिता के पास ले चले। वह कहने लगी, एक माँ और बाप के हृदय में अपनी संतान के लिए सदैव कोमल स्थान होता है। किंतु पति को डर था कि उसके माता पिता उसके साथ क्या करेंगे तथा मना कर दिया। अतः पटाचारा ने स्वयं जाने का निर्णय लिया। वह पड़ोसियों को बताकर चली गई। जब उसका पति घर आया तथा उसे पता चला कि क्या हुआ है, तो वह उसके पीछे गया। जब वह मिली तो उसने उसे वापस आने के लिए मनाने का प्रयास किया, किंतु उसने मना कर दिया तथा मार्ग में ही उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब आगे जाना आवश्यक नहीं प्रतीत हुआ, अतः वे गांव लौट आए। तथा दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो फिर अपने घर के लिए चल पड़ी। उसके पति ने पुनः उसे पकड़ा तथा उसे प्रसव पीड़ा अनुभव होने लगी। किंतु इस बार जब उसका पति एक आश्रय के निर्माण करने के लिए सामग्री की तलाश में था तो एक घातक सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। पटाचारा ने अकेले एक पुत्र को जन्म दिया। रात भर भीषण तूफान उठता रहा। अतः उसने अपने बच्चों की रक्षा के लिए उन्हें अपनी गोद में लेकर पेट के बल दुबक कर धरती पर लेट गई। सारी रात वह इस स्थिति में रही। प्रातःकाल यह सोचकर कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वह फिर निकल पड़ी। शीघ्र ही उसे अपने पति का शव मिला तथा उसने कहा, मेरे कारण मेरे पति का देहांत हो गया, तथा वह अत्यंत दुखी अवस्था में अपने मायके की दिशा में आगे बढ़ी। वह एक नदी पर पहुंची जो तूफान के कारण उफान पर थी, तथा कमजोरी के कारण वह दोनों बच्चों को एक साथ लेकर धारा पार करने में असमर्थ थी। अतः वह ज्येष्ठ बालक को तट पर छोड़कर नवजात शिशु को उस पार ले गई। उसे वहां नीचे रखकर बड़े बालक के लिए वापस आने लगी। जब वह मझधार में ही थी, एक शिकारी पक्षी ने नीचे आकर नवजात शिशु को झपट लिया। माँ हाथ उठाकर चिल्लाई, शू शू, दूर हटो, दूर हटो। बड़े लड़के ने अपनी माँ को हाथ उठाते देखा तो सोचा कि वह उसे बुला रही है। वह नदी में गिर गया और बह गया। पटाचारा अपने दोनों बेटों के शोक में रोती बिलखती आगे बढ़ी। मार्ग में श्रावस्ती के एक व्यक्ति से भेंट हुई। उसने अपने परिवार के विषय में पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, कृपया मुझसे उनके बारे में न पूछें। आप चाहें तो किसी और के बारे में पूछ सकती हैं। किंतु वह जिद करने लगी तो उसको बताया कि तूफान से उसका महल नष्ट हो गया था तथा उसके माता पिता एवं भाई मर गए। उस व्यक्ति ने कहा, देखिए, आप वहाँ उनके दाह संस्कार से उठे धुएं को देख सकती हैं। यह अतिशय हो गया था। पटाचारा विक्षिप्त हो गई। उसने इस संसार में अपने प्रत्येक घनिष्ठ एवं प्रिय व्यक्ति को खो दिया था। वह निर्वस्त्र इधर उधर भटकती रही, किंतु अपने नंगे होने से अनभिज्ञ थी। वह अपने पति, अपने बेटों, अपने माता पिता तथा अपने भाई के लिए रोती बिलखती चारों ओर भटकती रही। बुद्ध ने, जब वे भिक्षुओं को शिक्षा दे रहे थे, उसे दूर से आते देखा तथा उन्हें ज्ञात हो गया कि वह 1,00,000 कल्पों से अपनी पारमी पूरा कर रही थी। वह पद्मोत्तर बुद्ध के समय विद्यमान थी, जब उन्होंने धम्म निपुणता में अग्रणी एक भिक्षुणी की ओर इंगित किया था, तथा उसकी भी अभिलाषा हुई कि भविष्य में एक दिन वह बुद्ध से मिले तथा वही पद प्राप्त करे। पद्मोत्तर बुद्ध ने विचार किया कि क्या उसमें इसकी क्षमता थी तथा क्या भविष्य में ऐसा संभावित था, एवं उन्होंने एक निश्चित भविष्यवाणी की कि वह गौतम बुद्ध से मिलेगी और अपनी आकांक्षा पूरी करेगी। केवल एक बुद्ध की ही दृष्टि इतनी विस्तृत हो सकती है तथा वे ही इस प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं। अतः जब बुद्ध ने पटाचारा को देखा तो उन्हें ज्ञात हो गया कि वह केवल उन्हीं की शरण में आ सकती है। जैसे ही शिष्यों ने उसे आते देखा, वे उसे दूर भगाना चाहे, किंतु बुद्ध ने उनसे उसे आने की अनुमति देने के लिए कहा। जब वह आई तो उन्होंने उससे कहा, अपनी उचित मनोदशा में लौट आओ, तथा उसे अकस्मात अपनी दशा का बोध हुआ एवं वह अपने निर्वस्त्र होने के कारण लज्जा से धरती पर दुबक गई। किसी व्यक्ति ने उस पर अपना अंगरखा उसके ऊपर फेंक दिया। तब वह बुद्ध के निकट आई तथा उनका अभिवादन कर उसे अपनी शरण में लेने के लिए उनसे कहा एवं उसके साथ जो भी घटित हुआ था उसे बताया। बुद्ध ने उससे कहा, जन्म एवं मरण के इस चक्र में तुम अपनी संतानों तथा प्रियजनों के ह्रास पर बारंबार रो चुकी हो। चार महासागरों में जितना जल है तुमने उससे भी अधिक आंसू बहाए हैं। तथा उन्होंने निम्न गाथा दी, चतुषु समुद्देशु जलम परित्तकम् ततो बहुम अश्रु जलम अनप्पकम् दुखेन फुट्ठस्स नरस्स शोचना किम कारणा अम्म त्वम् पमज्जसि। मनुष्य ने जितने आंसू बहाए हैं उसकी तुलना में चार महासागरों में जल की राशि अत्यंत अल्प है। दुख एवं पीड़ा से व्याकुल नारी, तुम क्यों असावधान रहती हो? जैसे ही उन्होंने यह बात कही उसके शोक की प्रबलता कम होने लगी। यह देखकर कि उसके शोक की प्रचंडता कुछ सीमा तक शांत हो गई थी, उन्होंने उससे कहा, पटाचारा, जो भी भविष्य के जीवन मार्ग पर है उसके लिए संतान एवं प्रियजन आश्रय या शरण नहीं हो सकते, तो कितना कम वर्तमान जीवन में। नैतिक कार्यों के माध्यम से स्वयं को नियंत्रित कर बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार निर्वाण के लिए मार्ग निर्बाध करना चाहिए। बुद्ध के प्रवचन के अंत में वह जागृति के पहले चरण में स्थापित हो गई तथा उसके अंतर्मन की मैल, जो संख्या में समूची पृथ्वी पर धूल के कणों के समान थी, भस्म हो गई। उसने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश के लिए अनुरोध किया एवं एक भिक्षुणी के रूप में पूर्ण जागृति के लिए साधना करने में लग गई। एक दिन वह अपने पैर धो रही थी तथा जब उसने पानी उडेला तो कुछ जमीन पर गिर गया। जल थोड़ी दूर बहकर रुक गया, दूसरी बार थोड़ा और आगे गया, तीसरी बार और भी आगे तक बहा तथा उसने इसी को अपने ध्यान के विषय के रूप में प्रयोग किया। उसने सोचा, जिस प्रकार मेरे द्वारा पहली बार छलका जल थोड़ी ही दूर तक गया, उसी प्रकार इस संसार में प्राणी अल्पायु में ही मृत हो जाते हैं तथा जिस प्रकार मेरे द्वारा छलका पानी दूसरी बार थोड़ा और आगे तक बहा, उसी प्रकार इस संसार में प्राणी अपने जीवन के उत्कर्ष में मृत होते हैं तथा जिस प्रकार तीसरी बार जल कुछ और आगे तक गया, इस संसार में प्राणी अपनी वृद्धावस्था में मरते हैं। गंध कुटी में विराजमान बुद्ध ने देखा कि अब वह पूर्ण मुक्ति के लिए तैयार थी। उन्होंने अपना देदीप्यमान बिंब भेजा और उससे कहा, पटाचारा, पंचस्कंध के उदय व्यय को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उदय व्यय को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का, यहाँ तक कि एक क्षण का जीवन श्रेयस्कर होता है। तथा उन्होंने उस गाथा के माध्यम से निर्देश दिया जिसे हमने प्रारंभ में उद्धृत किया है, योच वत्ससतम जीवे अपश्यम उदयव्ययम् एकाहम् जीवितम् सेयो पश्यतो उदयव्ययम्। उदय व्यय को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उदय व्यय को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेयस्कर होता है। गाथा के समापन पर पटाचारा को अलौकिक शक्तियों के साथ अर्हत्व प्राप्त हुआ तथा वह धम्म निपुण भिक्षुणियों में सर्वोपरि बन गई। 4 आर्य सत्य। इसमें कोई संदेह नहीं कि आस्था या श्रद्धा पूर्वापेक्षित है, किंतु वास्तव में धम्म साधना ही गणनीय होती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, तुम्हें ही किच्चम आतप्पम अखाकारो तथागता, तपना तो तुम्हें ही पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा। तथागत तो आख्यात करते हैं, अर्थात बुद्ध तो केवल मार्गदर्शन करते हैं। आज अपराह्न में हम आपको विपस्सना साधना में प्रशिक्षण देंगे। विपस्सना साधना सिखाने से पहले हमें आपको चार आर्य सत्य का कुछ स्पष्टीकरण देना है। इस विषय में मैं सयाजी उबाखी के लेखन से कुछ अंश पढ़ता हूँ। बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम धर्मोपदेश में दिए गए चार आर्य सत्य के आधार पर दर्शन की इस प्रणाली की स्थापना हुई है। यह उपदेश धम्म चक्र पवत्तन सुत्त अर्थात धर्मरूपी चक्र की गतिमान करने वाले सूत्र के नाम से जाना जाता है। चार आर्य सत्यों में से पहले तीन बुद्ध के दर्शन की व्याख्या करते हैं, जबकि चौथा अर्थात अष्टांगिक आर्य मार्ग जो कि नैतिकता व दर्शन की आचार संहिता है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। तो चार आर्य सत्य क्या हैं? वे हैं एक दुख सत्य, दुख का सत्य, दो समुदय सत्य, दुख की उत्पत्ति का सत्य, तीन निरोध सत्य, दुख के अंत या दुख की समाप्ति का सत्य, तथा चार मग्ग सत्य, दुख की समाप्ति के लिए अग्रणी पथ का सत्य। दुख सत्य के बोध की आवश्यकता पर इसलिए बल दिया गया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति बौद्ध दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को पूरी तरह समझ सके। इस तथ्य के प्रति किसी भी संदेह को दूर करने के लिए बुद्ध ने दो अलग अलग दृष्टिकोणों से समस्या का समाधान दिया, तर्क द्वारा तथा अनुभव की प्रक्रिया द्वारा। तर्क के दृष्टिकोण का उपयोग कर बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिखाया कि जीवन एक संघर्ष है, जीवन दुखद है, वृद्धावस्था दुखद है, रुग्णावस्था दुखद है, मृत्यु दुखद है, किंतु वासना का प्रभाव मानव जाति में इतना प्रबल होता है कि मनुष्य सामान्यतः स्वयं के हित को भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्हें कामुक सुख के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि पेट में प्रसव पूर्व की अवधि शिशु के लिए कितनी दुखदायी होती होगी, तथा उसे जन्म के समय से अस्तित्व के लिए कैसा कैसा संघर्ष करना पड़ता होगा। सोचिए कि जीवन का सामना करने के लिए कितनी तैयारियों की आवश्यकता होती है, तथा एक वयस्क के रूप में भी संघर्ष आखिरी श्वास तक चलता ही रहता है। जीवन क्या है इसकी आप बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। जीवन वास्तव में दुखमय है। व्यक्ति अहं से जितना ही अधिक संबद्ध होता है, दुख उतना ही अधिक होता है। किंतु व्यक्ति को जो दुख एवं पीड़ा भोगनी पड़ती है उसे क्षणिक कामुक सुख के पक्ष में दबा दिया जाता है, किंतु यह क्षणिक कामुक सुख अंधकार में मात्र यदा कदा चमकते जुगनू के प्रकाश की तरह है। यदि यह विभ्रम तथा अज्ञान अर्थात मोह जो उसे सत्य से दूर रखता है न होता तो मनुष्य अवश्य ही जीवन दुख एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग निकाल चुका होता। अनुभव की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बुद्ध ने बताया कि कैसे कोई भी यह स्वयं देख सकता है कि सभी अनुबद्धित अवस्थाओं की वास्तविक प्रकृति क्या है। उनके शिष्यों को उनसे ज्ञात हुआ कि मानव शरीर कलापों अर्थात उप परमाणविक इकाइयों से रचित है, तथा प्रत्येक कलाप जिस क्षण बनता है उसी क्षण नष्ट भी हो जाता है। प्रत्येक कलाप प्रकृति के 8 तत्वों से गठित एक पुंज है। पहले 4 महाभूत कहलाते हैं, अर्थात वह आधारभूत भौतिक गुण जो एक कलाप में सर्वाधिक है। वे हैं पृथ्वी, आपो, तेजो तथा वायु, अर्थात विस्तार तत्व या पृथ्वी, सामंजस्य तत्व या जल, विकिरण तत्व या शीतलता एवं उष्मा तथा गति तत्व या वायु। अन्य 4 तत्व केवल अनुषंगी हैं जो पहले 4 से उत्पन्न होते हैं तथा उन पर निर्भर करते हैं। वे हैं वर्ण, गंध, रस, ओज, अर्थात रंग, गंध, स्वाद तथा पोषक सार या आहार। भौतिक स्तर पर स्पष्टतः कलाप एक सूक्ष्मतम कण है। जब 8 प्रकृति तत्व जिनकी व्यवहार मात्र ही विशेषता है एक साथ एकत्रित होते हैं, केवल तभी कलाप की इकाई का गठन होता है। दूसरे शब्दों में एक अत्यंत संक्षिप्त पल की अवधि में व्यवहार के इन 8 प्रकृति तत्वों का सह अस्तित्व जो एक पुंज है कलाप के रूप में जाना जाता है। ये कलाप सतत परिवर्तन या प्रवाह की स्थिति में है। वे एक ऊर्जा की धारा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक मोमबत्ती का प्रकाश या बिजली के एक बल्ब की ज्योति ऊर्जा की एक धारा है, यह जिसे हम शरीर कहते हैं कोई इकाई नहीं है जैसी कि प्रतीत होती है, अपितु जीवन शक्ति के सह अस्तित्व के साथ भौतिकता का प्रवाह है। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए लोहे का एक टुकड़ा गतिहीन होता है, किंतु एक वैज्ञानिक को ज्ञात है कि यह इलेक्ट्रॉनों अर्थात अति सूक्ष्म ऋणाणुओं या विद्युत कणों से गठित है जो सभी सतत परिवर्तन या प्रवाह की स्थिति में है। यदि यह एक लोहे के टुकड़े का सत्य है तो किसी जीवित जीव जैसे मनुष्य की स्थिति क्या होगी? एक मानव शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन तो और अधिक प्रचंड होंगे। क्या मनुष्य स्वयं के भीतर हो रहे उद्वेग और प्रकंपन का अनुभव करता है? क्या वह वैज्ञानिक जो जानता है कि सब कुछ परिवर्तन या प्रवाह की स्थिति में है कभी यह भी अनुभव करता है कि उसका स्वयं का शरीर मात्र ऊर्जा एवं प्रकंपन है? उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होगी जो अंतरावलोकन द्वारा देखता है कि उसका स्वयं का शरीर मात्र ऊर्जा एवं प्रकंपन है? अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई व्यक्ति गांव के किसी कुएं का एक गिलास पानी पी सकता है, किंतु मान लीजिए कि उसकी आंखें एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र की तरह शक्तिशाली हों, तो वह कुएं का पानी जिसमें उसे आवर्धित रोगाणु दिखाई देंगे उसे पीने में निश्चित रूप से वह संकोच करेगा। उसी प्रकार जब वह स्वयं के भीतर सतत परिवर्तन अर्थात नश्वरता, अनित्य, पाली में अनिच्य का अनुभव करने लगता है तो वह उसके फलस्वरूप अवश्य ही दुख के सत्य को समझने लगेगा। अपने भीतर हो रहे विकिरण, प्रकंपन तथा परमाणविक इकाइयों के घर्षण के तीक्ष्ण अनुभव के माध्यम से उसे ऐसा बोध होता है वास्तव में जीवन अंदर और बाहर दोनों दुखमय है, सभी प्रतीतियों में तथा परम सत्य के रूप में भी। तो दुख का उद्भव क्या है? बुद्ध ने कहा है कि दुख की उत्पत्ति तृष्णा, पाली में तणहा या लालसा है। एक बार इच्छा का बीज बो जाने पर वह उगकर लोभ के रूप में बढ़ता है तथा सत्ता या आर्थिक लाभ के लिए लालसा या वासना का प्रजनन करता है। वह मनुष्य जिसमें यह बीज बो दिया गया है इन लालसाओं का दास बन जाता है तथा वह स्वतः ही जीवन पर्यंत उनके पीछे अनवरत मानसिक एवं शारीरिक प्रयास करने के लिए प्रेरित हो जाता है। निश्चित रूप से इसका अंतिम परिणाम उन बुरी मानसिक शक्तियों का संचय होता होगा जो उसके स्वयं के कार्यों, शब्दों तथा उसके भीतर निहित इच्छा या लोभ तथा क्रोध या द्वेष, पाली में दोष, द्वारा प्रेरित विचारों से उत्पन्न होते हैं। दार्शनिक रूप से ये संस्कार, पाली में संखार, अर्थात मानसिक कर्म शक्तियां हैं जो समय के साथ कर्म करने वाले व्यक्ति पर प्रतिक्रिया करती हैं तथा ये संखार ही शारीरिक एवं मानसिक धारा प्रवाह अर्थात भीतर भीतर दुख की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। तो फिर वह मार्ग क्या है जो दुख की समाप्ति की ओर अग्रणी होता है? वह मार्ग बुद्ध के सर्वप्रथम धर्मोपदेश में बताए गए अष्टांगिक आर्य मार्ग के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, इस अष्टांगिक पथ को तीन मुख्य चरणों अर्थात शील, पाली में सील, समाधि तथा प्रज्ञा, पाली में पय्या, में विभाजित किया गया है। सील अर्थात नैतिकता में तीन चरण सम्मिलित हैं, सम्यक वाणी, सम्यक कार्य एवं सम्यक आजीविका। सम्यक परिश्रम, सम्यक सजगता एवं सम्यक एकाग्रता, ये तीन चरण समाधि, मन की समता में सम्मिलित हैं तथा प्रज्ञा, पाली में पय्या, या विवेक में दो चरण हैं, सम्यक संकल्प तथा सम्यक दृष्टि। सील एवं समाधि के अंतर्गत आने वाले पहले छह चरणों पर हम पहले से ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब हम पय्या के अंतर्गत सम्यक संकल्प, पाली में सम्मा संकल्पो, तथा सम्यक दृष्टि, पाली में सम्मा दिट्ठि की जांच करते हैं। सत्य का समुचित ज्ञान ही बौद्ध धर्म का उद्देश्य एवं लक्ष्य है तथा सम्यक संकल्प का अर्थ है अंदर एवं बाहर दोनों क्षेत्रों में मानसिकता एवं भौतिकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन जिससे सत्य का ज्ञान हो सके। कुछ विद्वान सम्यक संकल्प का अर्थ समुचित चिंतन भी बताते हैं। मन तथा भौतिकता के लिए पाली में नाम एवं रूप शब्द हैं। नाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ज्ञानेन्द्रियों की विषय वस्तु की ओर झुकाव या नमन की होती है। रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतत परिवर्तन के कारण यह नश्वर होता है। नाम तथा रूप के लिए अंग्रेजी में निकटतम शब्द माइंड एवं मैटर तथा हिंदी में मन एवं पदार्थ हैं। वास्तव में नाम शब्द का प्रयोग चेतना या विज्ञान, पाली में विज्ञान, संवेदना, पाली में वेदना, संज्ञान या संज्ञा, पाली में संज्ञा, तथा इच्छा शक्ति ऊर्जा या संस्कार, पाली में संखार, के लिए होता है। ये तथा पदार्थ अथवा रूप मिलकर पंच स्कंध, पाली में पंचखंड, बनाते हैं। इन्हीं पंच स्कंधों में बुद्ध के अस्तित्व की सभी मानसिक एवं भौतिक प्रक्रियाएं, जो वास्तव में मन तथा पदार्थ के सह अस्तित्व की निरंतरता है, का सार अभिव्यक्त किया है। किंतु जो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका अहं या व्यक्तित्व है। सम्यक संकल्प में साधक जिसने समाधि का शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी विकसित किया है, वह अपना ध्यान स्वयं में केंद्रित करेगा तथा आत्मविश्लेषी ध्यान से प्रथम भौतिकता की प्रकृति, तत्पश्चात मन एवं मानसिक गुणों की प्रकृति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेगा। वह कलापों को उनकी वास्तविक स्थिति में अनुभव करता है तथा कभी कभी उनका अवलोकन भी करता है। वह समझने लगता है कि भौतिकता एवं मन दोनों निरंतर परिवर्तनशील हैं। वे नश्वर एवं क्षणभंगुर हैं। जैसे जैसे उसकी एकाग्रता बढ़ती है, उसके भीतर की शक्तियों की प्रकृति और स्पष्ट होती जाती है। यह स्पष्टीकरण सयाजी उबाखी के व्याख्यान बौद्ध धर्म है क्या, What Buddhism is, में दिया गया है। आज प्रातः बस इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।